चराग है मेरे पैराले कलाम तेरा, चराग है मेरे पैराले कलाम तेरा, ते मेरे राह दे बिच ओ है रोशनी करदा, चराग है मेरे पैरा
खुदावन के जिंदगी बख्श कलाम में से मत्ती की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील उसका 9:27 से पढ़ेंगे। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चलाए कि ऐ इब्ने दाऊद, हम पर रहम कर। जब वह घर में पहुंचा तो वो अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमको एतकाद है कि मैं ये कर सकता हूं? उन्होंने उससे कहा, हां खुदावन। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे एतकाद के मुताबिक माफिक तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गई और यीशु ने उनको ताकीद करके कहा, खबरदार कोई इस बात को ना जाने, मगर उन्होंने निकलकर उस तमाम इलाके में उसकी शोहरत फैला दी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद यीशु मसीह की बरकत हो और हम सब की रहनुमाई हो, आमीन। आज हम खुदावंद के हुजूर झुके और उससे उसकी रहनुमाई मांगे, क्योंकि वो दुनिया का नूर है। वो हमारी तारीख राहों को रोशन करता है। वो हमारे तारीख दिमागों को अपनी हिकमत और दनाई बख्शता है। हम दुआ करेंगे। खुदा बाप, तू इब्राहिम की रहनुमाई करता रहा। खुदावन खुदा, तू मूसा का रहनुमा रहा। तू खुदावन खुदा दाऊद के आगे आगे चलता रहा। खुदावन खुदा, तू दानियल को जोर और हिकमत और खुदावन खुदा अपने नूर से खुदावन खुदा नवाजता रहा। आज हम सब के भी खुदावन खुदा दिलो दिमागों को रोशन कर, ताकि इस कलाम के वसीला से, इस मौजजे के वसीला से जो अभी हमने पढ़ा, सुना और देखा है, खुदाम खुदा तुझ पर और ज्यादा तवक्कल करें और तेरे नूर की रहनुमाई में जिंदगी बसर करें। यीशु मसीह नासरी के नाम में आए हुए तमाम बहन भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों को इस पैगाम के वसीला से बरकत दे, ये दुआ मांगता हूं, आमीन। अभी अभी हमने देखा कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब यायर उसके पास आया, जो उसकी तकरीबन 12 बरस की बेटी थी जो मर गई थी, यीशु ने उसे जिंदा किया। और इससे पहले यायर के घर जाता यीशु मसीह 12 बरस से जो बीमार औरत थी, वो नापाक औरत जो दुख उठा रही थी, जो दुनियावी तौर पर लोगों से अलहदा थी, रूहानी तौर पर तो वो बहुत मजबूत थी, लेकिन मुआशरती तौर पर वो अकेलेपन का सामना कर रही थी। अपना रुपया पैसा हकीमों पर और हकीमों को दे चुकी थी, शिफा पाने की बजाय ज्यादा बीमारी का सामना कर चुकी थी। उसे यीशु मसीह ने शिफा दी, उसने ईमान से उसे छुआ। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं, जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चलाए के ए इब्ने दाऊद, हम पर रहम कर। खुदावन यीशु मसीह जब उनके इस रहम की अपील को, रहम की दरखास्त को सुनता है कि वो उसे कहते हैं, ए इब्ने दाऊद, हम पर रहम कर। सो दो अंधों को देखते हैं। बाइबल मुकद्दस में बहुत से मुख्तलिफ अंधों का जिक्र हमें मिलता है, आर्जी अंधों का जिक्र, रूहानी अंधों का जिक्र, पदेशी अंधों का जिक्र, और फिर अबलीस की तरफ से उसके कुवत और ताकत के बायस जो रूहानी, या जैसे कह सकते हैं कि खुदा के नूर से दूर गुनाहों के अंधेरे में खोए हुए अंधे। और फिर हम देखते हैं और बहुत से अंधेपन को, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि हम इस बात पर गौर करें कि ये दो अंधे ना जिस्मानी अंधे थे और पदेशी अंधे नहीं थे, जिस्मानी। ये अंधापन खास तौर पर बाइबल मुकदस में जब हम देखते हैं, ये मिस्र, अरब और फलस्तीन के इलाके में जब देखते हैं तो बहुत ज्यादा वहां पर अंधे पाए जाते थे। उस इलाके में बहुत ज्यादा धूल उड़ती थी, बहुत ज्यादा गर्मी, गबार और हवा, और या फिर दूसरी वजहों से, यानी कि किसी बिजली के चमकने के वजह से ये बीमारी जो अंधेपन की आम थी उस इलाकों में। तो इन दो अंधों को देखते हैं, ये अंधे क्या करते हैं। जब उन्होंने सुना है कि यीशु मसीह ये सब काम कर रहा है तो वो यीशु मसीह के पास जाते हैं। ये अंधे क्या करते हैं, यीशु मसीह को पुकारते हैं कि ए इब्ने दाऊद, हम पर रहम कर। ये यीशु मसीह के बहुत से नामों में से एक नाम या लकब है जिसे कहते हैं इब्ने दाऊद। ये यीशु मसीह की पैदाइश, उसकी नस्ल और उसकी इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो खुदावन खुदा की तरफ से चुना हुआ मसीह, दाऊद की नस्ल से पैदा होने वाला तसल्ली का सरचश्मा, और ना उम्मीदों की उम्मीद, और खुदावन खुदा की तरफ से क्या है, चुना हुआ खुदा का वसीला है जो अपने लोगों को निजात और शिफा और रहाई और अंधों को बनाई देता है। सो जब उन्होंने कहा कि इब्ने दाऊद, हम पर रहम कर, तो वो इस बात पर पूरा तकाद रखते हैं कि वो उनको शिफा दे सकता है। हो सकता है इन्होंने ये पैगाम सुना हो कि यीशु मसीह ने हैकल में कहा कि खुदावन का रूह मुझ पर है, कि उसने मुझे इसलिए चुना कि अंधों को बनाई, कैदियों को रहाई, कुचले हुओं को आजाद करूं, और उन सबको जो मुसीबत ज़दा हैं, खुदावन यीशु मसीह कहता है कि उनको मैं खुदा की खुशखबरी की मनादी करूं। सो इन्होंने यीशु मसीह के बारे में सुना हुआ है और उन्होंने ठीक नाम से उसे पुकारा, इब्ने दाऊद, हम पर रहम कर। सो पहली बात हम देखते हैं कि ये अंधे क्या करते हैं, यीशु को पुकारते हैं कि इब्ने दाऊद, हम पर रहम कर। दूसरी बात, जब वो घर में पहुंचा तो वो अंधे उसके पास आए। हमें नहीं बताया गया कि कोई उनको लेकर आया, लेकिन ये अंधे उसके पास आए। जैसे प्यासा कुएं के पास जाता है, पानी कुएं पानी प्यासे के पास नहीं जाता। ये भूखे और प्यासे हैं यीशु मसीह के उस मोजजे के वो उनको शफा दे सकता है। ये इस बात की दिल में ख्वाहिश रखते हैं कि एक बार फिर इस दुनिया के रंगों को, जानवरों को, नदियों नजारों को देखें, और खासकर यीशु को देखना चाहते हैं। उनके दिल के अरमान बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि ये पदेशी अंधे नहीं हैं। ये अंधे उस दौर, उस मुल्क, उस इलाके के माहौल के मुताबिक, हो सकता है धूल मिट्टी की वजह से, बाहर सोने की वजह से, या बिजली चमकने की वजह से, या एक्सीडेंट, या कोई ऐसी जिस्मानी बीमारी है जिसकी वजह से ये अंधे हैं। ये पदेशी अंधे नहीं हैं। सो उनकी ख्वाहिश है कि वो फिर देखें। तो वो यीशु मसीह के पास जाकर क्या कहते हैं कि हम पर रहम कर, और यीशु मसीह उनसे ये सवाल करता है। जब हम 28वीं आयत को देखते हैं तो लिखा है उसके दूसरे, और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमको एतकाद है कि मैं ये कर सकता हूं? उनका जवाब क्या था? हाँ, उन्होंने उससे जवाब में कहा, हाँ खुदावंद। खुदावंद का जो जुमला यहां पर उन्होंने इस्तेमाल किया है, ये खासल खास इसी बात की तरफ इशारा है कि हाँ खुदावंद मालिक, हमारे आका, हमारे मोहतरम, हमारे खुदावंद। ये जुमला खासल खास बहुत दफा इसीलिए इस्तेमाल किया जाता था कि तू मोहतरम है, हम कुछ भी नहीं, तुझ पर अपना एतकाद और भरोसा रखते हैं क्योंकि तू मालिक है। और उन्होंने यस्सु को कहा कि हाँ खुदावंद, हम यकीन रखते हैं। तो जब यीशु ने यह सुना तो तब उसने उनकी आंखों को छूकर कहा कि तुम्हारे एतकाद के मुताबिक तुम्हारे लिए हो। इन अंधों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। पहली बात, ये रहम की अपील करते हैं। वो उस खास सही हस्ती के पास आते हैं, ठीक जिस तरह उस 12 वर्ष की बीमार औरत ने ठीक यीशु मसीह के पास आई और यीशु के ऊपर ईमान रखा और निजात निजात दहिंदा से क्या पाई, शिफा पाई। सो ये यीशु के पास आते हैं, यीशु के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। आसमान और जमीन पर कोई और नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से शिफा, निजात, रहाई या अंधापन दूर हो। इन दो अंधों के अंधेपन को खुदावंद यीशु मसीह ने दूर किया। इनकी बेशक आंखें नहीं हैं, लेकिन इनके कान बहुत तेज हैं। बाइबल मुकद्दस इसीलिए बार बार खुदावंद यीशु मसीह कहता है, जिसके सुनने के कान हो वो सुने के रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है, जिसके कान हैं वो सुने के मैं क्या कहता हूं। सो ये यीशु के कहे हुए कलाम पर जो उन्होंने सुना होगा कि वो किस तरह कलाम करता है, ये उसके कलाम पर ईमान रखते हुए कि ये वाकया ही इब्ने दाऊद है। वो इब्ने दाऊद के पास आए और इब्ने दाऊद ने उनको क्या दी, शफा दी उनके अंधेपन से। सो यीशु ने जब उनसे सवाल किया, उन्होंने कहा हाँ खुदावन, तब यीशु ने कहा तुम्हारे यकीन के मुताबिक जो तुमने दिल में ठहरा लिया है, जो तुमने कहा है वो तुम्हारे लिए हो, और ऐसा ही हुआ। और यहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने उनको कहा खबरदार किसी को ना कहना। लेकिन बाइबल मुकद्दस में ये हम हैरानगी की बात देखते हैं, जब 10 कोढ़ियों को शिफा हुई तो एक वापस आता है और वो खुदा खुदा को बताता है कि मैं शिफा पा गया, और 9 ने खबर तक ना दी। यहां पर यीशु मसीह इनको मना करता है कि किसी से ना कहना, लेकिन इन्होंने क्या किया, जाकर उसकी खबर इर्द गिर्द फैला दी, उसका चर्चा करने लगे, उसके बारे में लोगों को बताना शुरू कर दिया। हम भी इनसे ये बात सीख सकते हैं, बेशक खतरनाक हो सकता है, लेकिन हमें यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बताने की जरूरत है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस थोड़े से लम्हों में हम इन अंधों से अंधेपन पर जरा गौर करेंगे कि ये वो अंधे हैं जो जिस्मानी तौर पर अंधे हैं, लेकिन ये अंधे किसी ना किसी हादसे के वसीला से अंधे हुए हैं, बिजली चमकने के या किसी और वजह से। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि हम बाइबल मुकद्दस में उस अंधेपन को देखें जिसके बारे में हमें मुख्तलिफ हालतें मिलती हैं। पहली बात मेरे साथ निकालें, मत्ती की इंजील। ये मजहब परस्ती का अंधापन है जिसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह फकीयों और फरीसियों को मलामत करता है और उन पर अफसोस करता है। मेरे साथ निकालें मत्ती की इंजील, उसका 23 बाप। 23 बाप जब हम उसकी 16वीं आयत को देखते हैं, तो यहां पर खुदावंद यीशु मसीह फकीयों फरीसियों से मुखातब है, उन पर अफसोस करते हुए, उन पर जब ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है यूनानी जबान में या इब्रानी में, अफसोस, तो ये बहुत ही अहम लफ्ज है और ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही टूटे हुए कह सकते हैं कि ऐसा एहसास है जिसमें कि तुम पर बहुत ज्यादा अफसोस के तुम में शिफा नहीं बल्कि तुम में क्या है, मौत ही मौत है। सो जब यहां पर यीशु मसीह ये जुमला कहता है फकीयों फरीसियों को, मत्ती 23 बाप उसकी 16 आयत में, तो यहां पर हम मजहब परस्ती के अंधेपन को देखते हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी रासबाजी पर तकब्बर, भरोसा खुदा की बजाय अपने आप को ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। आज इस दौर में हमें बहुत से ऐसे मजहब परस्त फकी फरीसी मिलेंगे जो अपने आप को आला दर्जा देते हैं, और इनके बारे में यीशु क्या कहता है 16वीं आयत में, ऐ अंधे राह बताने वालों, तुम पर अफसोस, तब अफसोस जो कहते हो कि अगर कोई मकदस की कसम खाए तो कुछ बात नहीं, लेकिन अगर कोई मकदस के सोने की कसम खाए तो उसका पाबंद होगा। ये लोगों को कहते थे कि कसम उठा लो, हैकल की वो बात कोई नहीं, लेकिन अगर हैकल के सोने की कसम उठाओगे तो तुम्हें उसका हर्जाना या कुर्बानी या उसके पाबंद होना पड़ेगा, उसका कोई कोई ना कोई उसका हर्जाना या उसकी क्या कह सकते हैं कुर्बानी या हदिया या उसका रुपया पैसा देना होगा। सो इनको देखते हैं यीशु मसीह ने यहां पर कहा, मजहब परस्ती के तकबर में अंधे लोग। मेरे साथ एक और अंधापन देखें, पदेशी अंधापन। जब हम यूहन्ना की इंजील उसके 9 बाब को देखते हैं, तो वहां पर हमें यूहन्ना की इंजील में लिखा है रूहानी, यहां पर हम देखें जिस्मानी अंधापन। जब पहली आयत में लिखा है तो पढ़ते हैं तो लिखा है, फिर उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जन्म का अंधा था। लोगों ने यह पूछना शुरू किया, शागिर्दों ने यह पूछना शुरू किया कि रब्बी, किसने गुनाह किया था कि जो ये अंधा पैदा हुआ। ये जिस्मानी अंधापन है, जिस दिन से उसने अपनी माँ के पेट में से इस दुनिया में सांस ली, वो जिस्मानी तौर पर क्या हुआ, अंधा पैदा हुआ। सो जिस्मानी तौर पर अंधा पैदा हुआ, लेकिन लोग समझते थे कि इसने या इसके माँ बाप ने कोई गुनाह किया है जिसके बायस ये अंधा पैदा हुआ। बाइबल मुकद्दस में हमें कुछ वाक्या मिलते हैं पुराने अहदनामा में, जिनमें यहूदी लोगों का ये सोचना था कि अगर कोई बीमार या लाचार या अंधा या बहरा या किसी बीमारी में पैदा होता था, तो उनकी सोच ये थी कि इनके माँ बाप ने कोई गुनाह किया है जिसके बायस ये बीमारी में मुबतला है। सो हमें यहां पर जिस्मानी अंधों का जिक्र, अंधे का जिक्र मिलता है। मेरे साथ देखें, वक्ती तौर पर अंधापन, यानी कि आरजी तौर पर अंधापन। आप सबको याद होगा कि पालूस रसूल जब कलीसिया के ईमानदारों को, जो इब्तदाई कलीसिया था, उनको सताने के लिए, उनको तबाहो बर्बाद करने के लिए जा रहा था, तो इमाल की किताब में देखते हैं पालूस जब साउल था, वो यीशु मसीह के मानने वालों को धमकाता था, कत्ल करता था, उनकी धुन में इतना शदाई था, यानी कि इतना वो मगन था, इतना वो दीवाना हुआ था कि वो यीशु मसीह के मानने वालों को कत्ल करना चाहता था। जब ये वाकया हुआ, वो दमिश्क के अबादत खाने से इस बात का मजमून लेकर, खत लेकर जा रहा था कि उन तमाम मसीहियों को मार दे, कत्ल कर दे, और उनको सबको बांध कर वो यरूशलेम में ले जाए। जब वो दमिश्क की राह पर जा रहा था, तो खुदावंद यीशु मसीह का नूर उस पर चमका, यीशु मसीह का जलाल उस पर चमका, और वो जिस्मानी तौर पर, आरजी तौर पर क्या हो गया, अंधा हो गया। और पालूस के बारे में लिखा है, जब यीशु मसीह उस पर जाहिर हुआ, 8वीं आयत में लिखा है, और सौल जमीन पर से उठा, लेकिन जब आंखें खोली तो उसको कुछ दिखाई ना दिया, और लोग उसको हाथ पकड़कर दमिश्क में ले गए, और वो 3 दिन तक ना देख सका और ना उसने कुछ खाया। पालूस आरजी तौर पर 3 दिन के लिए अंधा हो गया, उसकी आंखें बंद हो गई। सो ये है आरजी अंधापन, आरजी अंधापन। और उसके बाद हम देखते हैं कि गुनाह के बायस, गुनाह के शिकंजे में जो लोग हैं, शैतान उनको किस तरह अंधा करता है। मेरे साथ निकालें, ये हम कह सकते हैं रूहानी अंधापन। 2 करंथियों 4 बाप उसकी 4 आयत में, ये उन लोगों की हालत है जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के पैगाम को, खुशखबरी को नहीं सुना, और अब्लीस ने उनको क्या कर दिया है, अंधा कर दिया। 3 आयत में लिखा है, 4 आयत में लिखा है, यानी तीसरी आयत से आपके लिए पढ़ूंगा, अगर हमारी खुशखबरी पर पर्दा पड़ा है, पालूस कहता है, तो हलाक होने वालों के वास्ते पड़ा है। कि अगर किसी को हमारी खुशखबरी का पैगाम समझ नहीं आ रहा, तो ये इसलिए है, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अकलों को इस जहां के खुदा ने क्या कर दिया है, अंधा, उनको रूहानी तौर पर, दिमागी तौर पर अंधा किया हुआ है, ताकि वो खुदा के नूर को और उसके मसीह को ना पहचाने। ताकि लिखा है, मसीह जो खुदा की सूरत और उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। ये रूहानी पन अंधापन है, जिसमें आज बहुत से लोग हैं जो बुत परस्ती के नशे में हैं, जो बहुत सी दूसरी बातों में मगन हैं, और वो रूहानी तौर पर क्या है, अंधे हैं। इसी के बारे में पालूस रसूल को खुदावंद यीशु मसीह ने जब चुना था, खुदावंद यीशु मसीह ने पालूस को जब चुना था, और पालूस ने यीशु मसीह को चुना के उसकी पीछे चले, तो इमाल 22 में 26वें बाप में हम देखते हैं, वहां पर लिखा है, खुदावंद यीशु ने से कहा कि मैंने तुझे इसलिए चुना है कि तू गैर कौमों को जाकर खुशखबरी का पैगाम दे, तू उनकी आंखों को खोल दे, 18वीं आयत में लिखा है, 26 बाब 18वीं आयत इमाल की किताब, कि उनकी आंखों खोल दे ताकि अंधेरे से रोशनी की तरफ और शैतान के इख्तियार से खुदा की तरफ रजू लाएं, और मुझ पर ईमान लाने के बायस गुनाहों की माफी और मुकदसों में शरीक होकर मेराज पाएं। आज बहुत से लोग अबलीस ने अंधे किए हुए हैं कि वो खुदा के नूर से दूर हैं। इसलिए मेरी आज दुआ है, जो दुआ पालूस ने इफ्सियों की कलीसिया में इफ्सियों के कलीसिया के लिए की थी, आज वो मेरी दुआ अरवाला की कलीसिया के लिए है। आज वो मेरी दुआ हर सुनने वाले के लिए है कि खुदावन खुदा ये करे। वो दुआ क्या है? कि हमारे खुदावन यीशु मसीह का खुदा, जो जलाल का बाप है, तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्शे, और तुम्हारे दिलों की आंखें और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाए, ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है, और उसके मेराज के जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है। आज मैं चाहता हूं कि आप उस कुदरत को पहचानें जो कुदरत आपके अंदर है। जैसे अलीशा के मुलाजम ने जब देखे कि घोड़ों ने, रथों ने उनको घेर लिया है और वो खौफ ज़दा है, जब वो खौफ में है तो अलीशा के पास आकर कहता है कि मालक अब क्या करें, तो अलीशा ने दुआ की उसके लिए, अपने खादम के लिए, और कहा कि खुदा खुदा इसकी आंखों को खोल दे। जब उसकी आंखों को खोला तो उसने उस पहाड़ को, जिसे उस दौर के सिपाहियों ने घेरा हुआ था, उन सिपाहियों को आसमानी रथों और घोड़ों ने घेरा हुआ था, यानी कि फरिश्तगान की फौज ने घेरा हुआ था। और पालूस वहां पर उसे, अलीशा क्या कहता है, कि जो उनके साथ है उनके साथ वालों से हमारे साथी जो हैं वो ज्यादा है। आज मेरी दुआ है कि हम खुदा की उस कुदरत को देखें जो हमारे साथ है, ताकि हमारे रूहानी अंधेपन को खुदावंद दूर करे, और हम इन अंधों की तरह रूहानी आंखें पाकर दूसरों को बताने वाले ठहरे कि यीशु मसीह कौन है। खुदावंद आपको बरकत दे। आए हम दुआ करें। खुदावंद आज का कलाम सबके लिए बरकत का बायस हो, हम सबके दिलों की आंखों को रोशन कर। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगता हूं, आमीन।